शेखी जिस हम लोग अंधकार में थे वैसे ही अंधकार में बने रहते हैं, इसका कारण क्या है? काफी तो है जैसा क्या कारण, कुछ ऐसी चीजें गले तक भरी पड़ी हैं जिसमें वो बातें उतारती नहीं। जैसे चैतन्य चेतावनी में कह दिया ना, बिना गति सुनी चेन भजने बड़ शिरो सार, कृष्ण भजने मोर बड़ शिरो सार, आप बिना गति श्लोके लगे गए। वैसे ही हम लोगों में यहाँ तक कि माता को छोड़ दिया कोई बात, पिता को भी छोड़ दिया, रुपया पैसा छोड़ दिया, किंतु क्रोध नहीं छूटता, क्रोध नहीं छूटता। और छोटी छोटी बातों पर जब क्रोध ही नहीं छूटता तो शास्त्रों में क्रोध की कहीं भी प्रशंसा है? ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसने क्रोध को खराब नहीं बतलाया, और ऐसा कौन सा महापुरुष महात्मा है जो क्रोध को बुरा नहीं बतलाया? और फिर इसी बीज को हृदय में रोपण कर, इसमें पानी दे करके, इसमें फलित फुलित करके अब बट वृक्ष जैसा हम बना लेते हैं उस क्रोध को। तो फिर उसके नीचे कोमल भक्ति का बीज अंकुरित होगा, रस तो ले लेगा कौन? क्रोध को कैसा कहा बतलाया गया? और ये यदि क्रोध अच्छी बात होती तो क्रोध को उत्पन्न करने के लिए हम लोग साधन भजन करते, और क्रोध यदि बुरी बात है तो इसको छोड़ने की चेष्टा करें। किंतु इसको छोड़ने के लिए हम लोग क्या चेष्टा कर रहे हैं? रखते हैं कुछ क्रोध है ये सब काम है ये सब क्रोध है ये सब रजोगुण समुद्भव क्रोधा क्रोधा असुमह
बुद्धि
क्या पंडित जी पंडित जी का श्लोक हमको याद है क्या?
स्मृति
भ्रमा के बाद में
स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाश
विनश्यति विनाश हो जाए। रोज रोज हम पाठ करते हैं और कभी हो जाता है। हमारे मठ में एक सन्यासी थे, हमको पाठ करना चाहिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आज का विषय है, किंतु इम्पोर्टेंट विषय देखते हैं तो जो दुख होता है जो कोई इस बात को ले ही नहीं पाता है जो हम करते हैं। गदगद क्रोध काम लाभ लोभ ये सब भरा पड़ा है, वो असल चीज को लेता ही नहीं है, वो भी तक पहुंचता नहीं, तो हम जो कुछ कहते हैं वो क्या होता है? सब मरुभूमि में जाकर विलीन हो जाता है। तब यदि कृषक सारा जीवन परिश्रम करें और एक उसको बीज न मिले तो उसको बड़ा आनंद होगा ना, हताश हो जाता है। इसलिए प्रणश्यति इसको याद रखना चाहिए। क्रोध केवल एक ही दशा में एक ऐसी है जहां पर कि वो लाभदायक है।
क्रोध कृष्ण
विद्वेषी जने, कृष्ण का विद्वेषी यदि हो तो उस पर क्रोध करने से कुछ लाभ है, और इसके लिए शास्त्रों में कुछ हद तक दिया गया है छूट मध्यम अधिकारियों के लिए, उत्तम अधिकारी के लिए नहीं। क्यों? वो भी समझता है कि ये परोक्ष रूप में भगवान की सेवा करता है, इसलिए उसको क्रोध होगा ही नहीं। तो मध्यम अधिकारियों को हो सकता है उसके लिए ये क्षम है, उसके लिए किंतु और किसी भी दशा में क्रोध हुआ तो हमारे आश्रम में चुचुड़ा में हमने देखा कि एक पूज्यपाद आश्रम महाराज थे, प्रभुपाद ने उनको संन्यास दिया। हमारे सामने बूढ़े थे, बूढ़े थे, दुबले पतले, बड़े भजन थे और साहित्यिक थे, लेखक थे,
भक्ति
भक्ति आश्रम विज्ञान आश्रम। तो वो बड़े देवदार आदमी थे। तो नरसिंह महाराज जी और सब जितने हैं उनके पीछे लगते थे, तो वो पीछे लगते थे तो वो ऐसा करते थे जैसे ये लोग
हंसे,
तो वो ओल नहीं खाते थे। ओल जानता है?
जिमीकंद।
जिमीकंद ओल कड़वा चीज में काट देता है, खा हो जाएगा ऐसे, इसलिए उसमें तैतूल इमली या कोई मान नहीं, और मन नहीं लगेगा, तुम्हारी रुचि बैकुंठ में नहीं होगी। तो यहाँ से थोड़ी दूर पर बैकुंठ से अयोध्या पुरी और यहाँ से दूर, किंतु रास्ता एक ही है, रास्ता दो नहीं है, इसलिए तुमको अयोध्या पुरी के मार्ग से ही तुम्हारे इष्ट देव के यहाँ जाना पड़ेगा। तो तुम जब जाएगा थोड़ी दूर पर तो अयोध्यापति रामचंद्र मिलेंगे और वहां से बहुत दूर ही द्वारा द्वारावती जो मथुरा के समान ही है वहां वो मिले। अयोध्या में तुम अधिक मत ठहरना। इसलिए ठहरना कि तुमको वहां से सुखपूर्वक द्वारकापुरी में जा सको, बस इसी संधान के लिए, अनुसंधान के लिए तुम ठहर। तुम जदुपति के अत्यंत प्रिय हो इसलिए तुम द्वारका जाओ और अपने प्रिय देवता का साक्षात करो। यहाँ पर कह रहे हैं कि अब इष्ट देव को दर्शन करना है तो उसका कुछ उपाय होता है, उपेय को पाने के लिए उपाय होता है। एक होता है साधन, एक साध्य, साध्य को पाने के लिए साधन की जरूरत है। ये साधन अनुभवी गुरु बतला सकता है, दूसरा कोई नहीं बतला सकता। A realized soul can tell how we can have our sadhu and what is sadhu. दूसरा कोई ये बतला नहीं सकता। तो नारद जी यहाँ पर गुरु के रूप में बतला रहे हैं, अपने अनुभवों को बतला रहे हैं। मैंने कल बतला परसों बतलाया था जो बैकुंठ से निकट है अयोध्या और दूर है द्वारका है, द्वार गोलोक गोलोक ब्रज का, द्वारावती मैंने क्या गेट, प्रवेश करने के लिए दरवाजा है, वृंदावन जाने के लिए मथुरा जाने के लिए जब तक कि द्वारका में प्रवेश नहीं होगा तब तक वहां नहीं जाएंगे। ब्रज में शुद्ध माधुर्य है, वहाँ माधुर्य है किंतु थोड़ा ऐश्वर्य मिला हुआ है, तो ऐश्वर्य के माध्यम से ऐश्वर्य से तो तुम बैकुंठ से जा रहे हो, तो वहाँ तुमको जाना आवश्यक है और वहाँ जाने के लिए तुमको यहाँ पर भी जाना है, अयोध्या के माध्यम से ही तुमको जाना पड़ेगा और रास्ता कोई है नहीं। तो कह रहे हैं मथुरापुरी जैसी द्वारा होती है। जैसी मैंने क्या, अरे जादव यहाँ है वहां पर भी जादव, यहाँ के जो पुरोहित लोग हैं वहीं पर वहां, दोनों एक ही समान। वर्णन भी शास्त्रों में ऐसा किया गया है ये उसी के समान ही है। यहाँ के जितने भाव हैं, जैसे जस क्योंकि वसुदेव को अपना पिता माता मानते हैं कृष्ण, तो द्वारकापुरी में मानते हैं कि नहीं, द्वारकापुरी में भी वही मानते हैं माता पिता। बलदेव जी भैया हैं वहाँ पर भी भैया, किंतु थोड़ा सा ये है कि वहाँ पर और कुछ बढ़ गए हैं, पुत्र हो गए हैं, नाती हो गए हैं, विवाह हो गया है सबका। यहाँ पर ये अभी नहीं हुआ था, वहाँ पर ये सब और बढ़ गया है परिवार, यहाँ पर परिवार, किंतु भावनाएं सब वही, इसलिए जैसा कहा गया। और अयोध्या कैसा है, बैकुंठ जैसा है। बैकुंठ में और इसमें करीब करीब निकट है। क्यों निकट है, यहाँ पर दास है, यहाँ पर भी दास है। रामचंद्र की लीला में भी दास के भाव है, किंतु दास होने पर भी कुछ वैशिष्ट है, किंतु है तो दास है, केवल बीच में एक प्रकोष्ठ है, एक प्राचीर है, दीवार है। वो दीवार किस चीज की है, पतली सी दीवार है ऐश्वर्य की। यहाँ पर अधिक ऐश्वर्य है, वहां थोड़ा कम है, किंतु दोनों ही दास्य प्रधान। इनके दास्य में कुछ विचित्रता है, प्रेम जरा कुछ अधिक है और वहां पर प्रेम जरा कम है। वो मुक्ति से लगा हुआ होने के लिए वहां पर प्रेम सेवा उत्तरा नहीं है, स्वसुख प्रधान है, सुख ऐश्वर्य उत्तरा। नारायण को देख करके लोग भक्त लोगों को आनंद होता है, नारायण को आनंद होता है कि नहीं ये ठीक नहीं, किंतु जितने भी भक्त हैं उनको नारायण को देख करके उन लोगों को आनंद होता है, किंतु होना क्या चाहिए प्रेम में, हमें देख करके प्रभु को आनंद है तब तक तो वो भक्ति है, और उनको देख करके हमको आनंद होता है तो अभी ये स्वसुख ऐश्वर्य उत्तरा है, प्रेम सेवा उत्तरा नहीं। वहां पर दास है, वहां पर भी दास है, किंतु यहाँ के दासों में प्रेम की कुछ कमी है। जैसे हाथ जोड़ करके लोग खड़े रहे वो ऐसे अभय थे, और वहां गरुड़ जी यहां होंगे, गरुड़ जी बैठे रहेंगे, प्रभु बुलाएंगे, यदि कहीं जाना हुआ टहलने के लिए तो उनको बुला लिया था, बस हाथ जोड़ करके प्रार्थना इत्यादि सब करेंगे। कभी कभी गरुड़ में जो उनके पार्षद हैं नारायण के, और हनुमान जी रामचंद्र जी के पार्षद हैं जो अयोध्या में रहते हैं, दोनों में अंतर थोड़ा सा बतला रहा, इससे आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हैं क्या अंतर। नारद जी गरुड़ के इनके भी प्रिय हैं, नारायण के भी और राम के भी रसिक हैं, दोनों जगह का अनुभव है ना? और गरुड़ जी को केवल बैकुंठ का ही अधिक अनुभव है, वहां का अनुभव नहीं है ना? और हनुमान जी को बैकुंठ का अनुभव कम है, अयोध्या का अनुभव है। एक ही चीज तभी वो कुछ वैशिष्ट बदला है। रामचंद्र जी को इंद्रजीत ने नाग माने सर्प, सर्पों के पास से बांध करके एकदम उनको और लक्ष्मण दोनों को गिरा दिया, और ऐसे जोर से कसा कि दोनों बेहोश जैसे हैं, होश आने पर भी अपने को छुड़ा न सके, उनके लिए ये वरदान है, जिस किसी को भी ये नाक पास न बंद कर सके। नारद जी उस समय में बाई चांस रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए लंका में आए और देखा जैसा बंदर भालू रो रहे हैं और राम और लक्ष्मण जी विवश पड़े थे। जब गरुड़ के पास में पहुंच गए, उसे गरुड़ जी रामचंद्र जी को आपके प्रभु ही हैं, वो राम रूप में वहां गए हैं नारायण जी, तो उनको नागपाशु में से बांध दिया गया है, तस्पश नहीं हो रहे हैं, आप पहुंचिए, आपके पहुंचते ही आप एक डर से मारे ये लोग छोड़ करके भाग गए हैं और वो बंधन से छुटकारा पा लेंगे। सोचे जी हमारे प्रभु वहां पर गए हैं तो लोग दर्शन भी गए हैं, तो वहां पर पहुंचे और देखा जी विवश पड़े हुए हैं और रामचंद्र जी भी विवश हो रहे हैं, लक्ष्मण जी भी विवश हो रहे हैं, आंखें जब दबाई हुई हुई न लीला कर रहे हैं जैसे आदमी विवश हो जाता है, चेष्टा सुनने हैं। ये वहां पर उपस्थित हुए, इनको देखते ही गरुड़ सातों ने देखा जी गरुड़ ये आ गए, अब एक एक करके खा जाएंगे हमें, जब ही देखा तब ही इनके गंध से ही तब छोड़ करके खाते भाग्य तो इनके मन में हुआ। अरे हमारे प्रभु तो बड़े विचित्र हैं, सर्वं तर्जामी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और इनके चारों तरफ में सर्पों ने लपेट लिया, बांध लिया सर्प जैसे साधा, और हमको देख करके हमारे गंध से ही भग गए, तो फिर ये सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान रहेगा, ये तो साधारण मनुष्य मान, हमारे प्रभु नारायण जी तो ऐसे नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान हमारे प्रभु है, और इनके तो चार हाथ है और इनके दो हाथ, शंख चक्र गदा पद्म लेते हैं, उनको तो कोई लड़ाई में हरा ही नहीं सकता, ये प्रभु हैं कि नहीं है उनको ये हो गया संदेह, और संदेहात्मा गुरु वैष्णव और भगवान के प्रति किसी को यदि संदेह हो जाए तो बस परमात्मा से चित्त होना हो जाता है। अंत में इस बात को पूछने के लिए शंकर जी के यहाँ गए, शंकर ने कहा ओ इसको संदेह हो गया है भगवत चरित्र में, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई मुझे फुर्सत नहीं है, मैं काम में जा रहा हूँ। पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि हम नहीं कुछ जानते हैं, तुम शंकर के पास में जाओ। शंकर जी ने कहा कि भाई हमको फुर्सत नहीं है अभी, यदि भगवान के तत्व में किसी को संदेह हो जाए तो मुक्त पुरुष तो उसको अपने संग के प्रभाव से हरि कथा से दूर कर सकता है, साधारण आदमी उसका संग करेंगे उसको भी संदेह हो जाएगा, वो दोनों आदमी जाएंगे, ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। शंकर ने कहा ऐसे लोगों का संग नहीं करना, दूर संग अथवा उनके अभिमान को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि खग जाने खगई का भाषा, उसी से इसको दूर करना चाहिए। ये राजा होकर के ही अपने प्रजा के पास में जाकर के दीनहीन होकर के आत्मसमर्पण करें और सफल में जाकर के इसका कल्याण, इसलिए भेज दिया तो वहां गए और कुछ दिन रह करके उनको तत्वोपदेश और रामायण की समस्त बातें जब कही तब संदेह तब उनकी महिमा को समझा कि हाँ ये नारायण ही हैं। और हनुमान जी जब अहिरावण उनको ले गया तो चले गए छोटा देश बनाकर, उनको रामचरित्र में कहीं भी कोई संदेह न था और ऐसी कोई सेवा नहीं जो किया और उनको साधारण नर मान करके ही किया, कभी उनको भगवान के रूप में ग्रहण ही नहीं किया, कभी नहीं ग्रहण किया, बस यही किंतु जानते हैं जो ये भगवान है, हृदय से जानते हैं किंतु सेवा करते हैं, क्योंकि अस्पष्ट भाव तो रहेगा ना वहां, किंतु भगवत बुद्धि रहेगी उनकी, किंतु फिर भी नर लीला के अनुसार में उनको संदेह कभी नहीं होगा उनके चरित्र पर, और उनकी यथावत सब सेवा करेंगे, मनुष्य लीला के अनुरूप उनकी सेवा में सहायता करें, गरुड़ इत्यादि के द्वारा उस ऐसा नहीं कर सकता। नारद जी सब कुछ जानते हुए भी हनुमान जी जैसी सेवा नहीं करेंगे। कविता पाठ गान और ये सब के द्वारा करेंगे। कभी राम कहेंगे प्रभु बड़े दयालु आप हैं, आज का आपका पैर में ही तेल लगाऊं और पाद संवाहन करूंगा। रामचंद्र देंगे और ये कहेंगे भी नहीं। क्यों? यहाँ पर ऋषित्व का कुछ अभिमान आता है। यदि करना पड़ेगा तो वैसा बनना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी शंकर होकर कभी बंदर बन करके निम्न श्रेणी में आकर के उनकी सेवा को, यदि सेवा करना है तो अभिमान को छोड़कर के दीन होकर के नीचे आना पड़ेगा, तब सेवा मिलेगी। बड़ा बन करके कोई सेवा नहीं कर सकता है। इसलिए यद्यपि अयोध्या बैकुंठ के निकट है, तो भी एक बीच में दीवार है, जिस दीवार के वजह से ये निकट रहने पर भी दीवार के वजह से थोड़ी सी दूर है, उसमें पाप तक है दोनों में। कहते हैं कि देखो यदि अयोध्या के बिना जाए गए होगा नहीं, अयोध्या जाने, और अयोध्या जाने का तरीका यह है कि यद्यपि गोपाल मंत्र से यह सिद्ध हो सकता था, किंतु गोपाल मंत्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, यहां अपना काम बनाने की जरूरत है, जिससे हमारा काम बन जाए। अपने साधन को गुप्त रखो, गोपनीय नहीं रहने से तो चारों तरफ में ये फैल जाएगा तो सिद्धि होगी नहीं, इसलिए गोपनीय रखो। किंतु गोपनीय गुरु से भी गोपनीय रखेगा, जैसे सती जी ने गोपनीय रखा, झूठ बोल दिया और फिर में एक संदेह रख लिया, हो गया उल्टा, ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि तुम को कार्य करना है, जिसे कार्य की स्थिति है, इसलिए तुम हे सीतापते, हे रघुनाथ, हे दशरथ नंदन, हे सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी, हे लक्ष्मण श्रेष्ठ, हे हनुमत प्रिय, हे सीतापते, हे सियाराम इत्यादि, आप इसी नामों का कीर्तन करते हुए और उन्हीं का कीर्तन जोर से करते हुए और अयोध्या जाए। नहीं जाए, ऐसा नहीं करेगा तो नहीं पहुंच सकता है। क्यों? वहां पर रक्षक कौन है? वो बंदर सब हैं, बंदर जाने नहीं देंगे तुमको। और यदि जहां रामचंद्र जी का नाम सुना, तुम्हारे लिए अपने पल पावड़े बिछा देंगे। बड़े आदर करके तुम्हें ले जाएंगे। और यदि तुमने कहा कहीं जो कीर्तन कर रहे थे क्या गोपाल हरे करेगा तो वहां नहीं घुसने देंगे, इसलिए मत करो। यहाँ पर यही सब नाम करना, क्या सीतापते, श्री रघुनाथ, लक्ष्मण ज्येष्ठ प्रभो, हनुमत प्रियवर इत्यादि कृतय वेद शास्त्र ख्यातम स्मरण तद गुण रूप वैभवंच। उनके नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण करके वैभव नामों का तुम कीर्तन और कीर्तन करते स्मरण क्या करो, क्या रामचंद्र जी के गुणों का। बड़े विनयी हैं रामचंद्र जी होकर के भी, कैसे थे विनय, विद्या ददाति विनयम, विद्या पढ़ लिया पूरा पंडित हो गए, सब पोथी पढ़ डाली और विनय नहीं हुआ टेढ़िए उठे देखे तो पांडित्य कहां, पांडित्य की परीक्षा इसमें है ये विनय। और विनय क्या करता है, ददाति पात्र उसे पात्रता प्रदान करती है किस चीज के लिए, जिस चीज को वो लाभ करना चाहता है। इसलिए भाई विद्या माने ही विनय, तो विद्या पढ़कर के हम लोग को नहीं, कोई हमसे साधारण ही व्यक्ति आए इसलिए आए, पढ़ाइए विराजमान हुई सुशोभित आसन को सुशोभन दीजिए, कहाँ से पधार रहे हैं। बड़े विनय के साथ में संभाषण करना, कहाँ से आया है इसलिए आया, महाराज जी से भेंट नहीं हो सकती है। You cannot meet Maharaj.
Because it's something ridiculous. Yes, it's another sir.
रूढ़ भाषा का प्रयोग मत करो, विशेष करके मत मंदिरों में। बड़ी नम्रता के साथ में हम लोगों को दूसरों को सम्मान देते हैं। नहीं भाई यहाँ पर जगह ही नहीं है, उनका तो 7 दिन जीवा सिर रगड़ेगा तो भी जगह नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं है। तो इसी तरह से गुरुजनों के साथ में ना, यही सफलता है और यही बुद्धिमत्ता है। और यत्र अस्य गंधो अपि भवेत् क्रियत क्रिये प्रीति परा तत्र तदैक निश्चय। और जो काम हम कर न सके, अभिघ्न पैदा कर लिया, हम नहीं करेंगे तो उपास को बहुत दूर, वही सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने काम को निकाल लेना चला के चतुराई से, ये बुद्धिमत्ता है, और काम को बिगाड़ दिया तो ये मूर्खता है। हमको तो काम बनाना है ना, तो इसी के लिए ये कह रहे हैं। बहुत ये गंभीर विषय है, इसको समझो तुम लोग। जब उन्होंने कहा जी सीतापति रामचंद्र जानकी जीवन सीता बल्लभ इत्यादि नाम लो, कहे प्रभो ये हमसे नहीं होगा, इसमें हमारी एकांतिकता नष्ट हो जाएगी। आई कैन नॉट टेल राम ना सीतापते हनुमत प्राप्य, अर्थात बुद्धिमत्ता है। और मूर्खता किस क्या है, कार्य भ्रम से ही ना मूर्खता, जीत पर अड़कर और कार्य को ध्वंस कर दिया और इष्ट की प्राप्ति हुई नहीं, ये तो मूर्खता रही है। अब जैसे देखो जावग्राम जावट जावट इज ए प्लेस यू नो जावट ग्राम बरसाने वाले महाराज दुर्गभानु महाराज जी ने बहुत बड़ा भारी भवन बना दिया, राधा जी निकल नहीं सकती घर से, चारों तरफ से बैन लगा दिया, गिवन बैन सो दैट श्रीमती राधा कैन कम आउट ऑफ हिज हाउस। तो उन्होंने जाकर के उसे कहा कि देखो तुम्हारी बहू यदि सूर्य की पूजा करेगी तो करोड़ों गायें हो जाएंगी और तुम्हारा पति का भला होगा और कल्याण होगा, धन धन से संपन्न हो जाएगा। तो मेरी बहू तू सूर्य की पूजा करना तो मैं नहीं भाग जाऊंगी घर से। नहीं बेटी ऐसा मत कर, सुंदर सुंदर फूलों उपवनों से फूल ले आना, हार गूंथना और रसोई में अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाना और सूच जी की पूजा कराना। बेटी तुम इसीलिए घर से निकलो, और कोई जरूरत नहीं है। बहुत जब मन आया तब ये मान, और वो भी पूर्णिमा जी आकर के कही राधा जी से बेटी तुम हमारी बात मान करके तुम करो, तो ये तो चाहती थी अच्छा सूर्य पूजा के लिए। अब वो सचमुच में सूर्य पूजा के लिए गई की और सूर्य पूजा किया, वो चतुर थी ना, उनसे बढ़कर के और कोई चतुर हो सकता है, कोई भी चतुर नहीं। अब वहां जाते हैं, जाती हैं, फूल चुनने जाती हैं, कहाँ जा रही है, फूल के लिए फूल चुन करके ला। फूल चुनने में क्या होता है, कृष्ण से मिलन। अच्छे गजरे गुथती हैं, अरे किस लिए ये बना रही है, तुमने तो कहा कि सूर्य के लिए पूजा के लिए ये बन, तो इसीलिए माला गुंथन करती है ना? मिठाई बना रही है, लड्डू मोती चूर
मनोहर लड्डू का,
मनोहर लड्डू का, और ये सब किस लिए? तो सूर्य पूजा करना है। ठीक, कोई मना नहीं है तो ये कर रही है। अच्छा, पूजा करने के लिए गई, पूजा में पुरोहित मिल गए, अंडरस्टैंडिंग। श्रीमती राधिका घोष को ओम मित्राय नमः, इदम् एतत् पुष्पमाल्यं मम सर्व सर्वस्वं अर्पयामि,
तुभ्यम् अर्पयामि,
तुभ्यम् अर्पयामि, ओम मित्राय। हे मित्र, आपके लिए मैं पुष्पमाल्य और पुष्पांजलि हृदय को और हृदय के सब कुछ को आपके चरणों में हे मित्र अर्पण करता हूं। ओम मित्राय, ओम दस द्वादश कलात्मने मित्राय नमः। यहाँ पर द्वादश कलात्मने मैंने द्वादश वर्ष